आज के टॉपिक अहम है, इसलिए आप सबसे कहूंगी कि बहुत तवज्जो के साथ आज की आयात को आपने सुनना है। एक दफा नहीं समझ आए, दोबारा आप सुनिए, इनके नोट सही से बनाइए। अगर आप गलत समझ लेंगे तो आगे गलत किसी को बताएंगे, जो कि फिर सही नहीं है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला पूरी तवज्जो के साथ आपने आज का लेसन सुन के और अच्छे तरीके से इसके नोट्स बनाने, ताकि आप किसी को फायदा पहुंचा सके। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं वो अहकामात जो अल्लाह ताला ने ईमान वालों को दिए, उम्मत मुस्लिमा जो एक नई उम्मत अब वजूद में आई थी उस वक्त। आप देखें, ये दूसरा पारा शुरू ही हुआ तो हमें पता चला कि एस उम्मत मुस्लिमा एक नया स्टेटस मुसलमानों को दिया गया, उनका किबला चेंज हुआ और उसके बाद उनको एक शरीयत दी गई। और अब आप शरीयत के अहकाम देख रहे हैं, और हमने यस अलूना का पढ़ के बहुत सारी चीजों का पढ़ा कि इस बारे में शरीयत क्या कहती है, इस बारे में मुसलमानों को क्या तालीम दी गई है। यानी हमारे लिए तो आज ही कुरान उतर रहा है ना, जैसे जैसे हम ये अहकाम पढ़ रहे हैं, क्योंकि ना तो ये कभी पहले पढ़ाए गए। ठीक है, एक सोसाइटी के अंदर होता है कि बताया जाता है, हाँ शराब सही नहीं है, जुआ सही नहीं, क्या इसकी वजूहात है, क्या इसके पीछे है, कहाँ खर्च करना चाहिए, किसको पहले देना चाहिए, ये सब चीजें हमें कुरान ऐसे गाइड करता है स्टेप बाय स्टेप कि कोई पहलू भी शरीयत का ऐसा नहीं है कि कंफ्यूजिंग हो, ऐसा नहीं है कि समझ में ना आ सकता हो। अल्हम्दुलिल्लाह सब चीजें क्लियर है। ठीक है, तो इसलिए हम सीखें शरीयत को अपनी, कि हमारे लॉज क्या है। हम किसी भी मुल्क में रहते हैं, हमें चाहे वहां का कानून कुछ भी है, हमें कौन सा कानून फॉलो करना है, अल्लाह की किताब का कानून। यानी आयली जिंदगी में जो हमारी घरेलू लाइफ है, जैसे आज से हम इंशाल्लाह ताला अहकामात पढ़ रहे हैं, शादी ब्याह के बारे में, तलाक के बारे में, फिर आगे रजात के बारे में पढ़ेंगे। अब आपके मुल्क में, जिस मुल्क में भी आप रहते हैं, कुछ भी कानून हो सकता है। लेकिन अब ये नहीं है कि आपने कहना कि हमारा कानून तो एक तरफ, अब हम इनका ही कानून लेकर उस पर चलेंगे। नहीं, जो कुरान ने कानून दिया उसी के मुताबिक हमें तलाक, निकाह और इन चीजों को करना होगा। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इन चीजों को समझें। देखते हैं हम आयात आज की, यस अलूना का अनिल खमरी वल मैसिर। वो सवाल करते हैं आपसे खमर के बारे में और मैसिर के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उस सोसाइटी में खमर और मैसिर क्या होती थी। खमर था यानी शराब, वो उसके इतने आदी थे, इस कदर ज्यादा शराब के रसिया थे कि यानी पानी की जगह भी, जैसे आप कहते हैं आज आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो वो लोग शराब पीते थे, इतनी ज्यादा शराब उनको महबूब थी। और मैसर जो था वो जुआ जुआ खेलते थे, जिसकी कई फॉर्म्स थी वहां पे जुए की। तो यानी अरब शराब के आदी और जुए के आदी थे। इनकी एंटरटेनमेंट जुआ होती थी और उनकी पार्टीइंग क्या होती थी, शराब, जैसे यहाँ के आज के मुआशरे में होती है। अच्छा, अब खमर का लेकिन एक चीज इसके अंदर आपको नोट करनी चाहिए, और वो ये है कि खमर के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर वो चीज जो अकल को ढांप दे वो खमर है। ठीक है, यानी हर नशा आवर चीज खमर है, और फरमाया हर नशा आवर चीज हराम है। ठीक है, खमर सिर्फ शराब को कह के उसको आप नहीं कह सकते कि सिर्फ शराब खमर है। जितनी ड्रग्स हैं जो नशा करती हैं वो सब इसमें आ जाती हैं। और मईसर, मईसर मैंने आपको बताया कि जैसे जो आसानी से मिल जाने वाला माल, और मईसर के अंदर भी जुआ तो है ही है, लॉटरी भी इसमें है। ये जो शर्तें लगाती हैं घोड़ों के ऊपर, या शर्तें लगाते हैं क्रिकेट पे, शर्तें लगाते हैं, आपको पता है आजकल ये सिट्टाबाजी कहते हैं उसको, या क्या कि यानी उसके ऊपर शर्तें लगाते हैं ना, कि अगर ये टीम जीत जाएगी तो इतना मुझे मिलेगा। तो ये तो इतना बड़ा आज कारोबार बन गया है कि यानी असल गेम तो गेम रही ही नहीं, उसके ऊपर वो बैठे हुए हैं जो शर्तें लगा रहे हैं, और फिर इतने इतने की उनको पैसे मिल रहे हैं, जो भी है उनकी हार जीत पे जो टीम्स खेल रही होती हैं। इसी तरह अगर शर्त तो खैर क्रिकेट की सिर्फ नहीं है, और भी जिस चीज पे भी लगा दे वो हराम हो जाती है। आप कार्ड्स खेल रहे हैं उसमें शर्त लगा ली, लोग ज्यादातर उसमें ही लगाते हैं ना, जो कार्ड्स खेलते हैं मेरे साथ शर्तें लगाते हैं, चेस है और कैरम है और ये सब, इनके ऊपर जब शर्तें लगा ली जाती हैं तो वो मैसर बन जाता है। तो फरमाया वो आपसे इसके बारे में पूछते हैं, क्यों? उस सहाबा ने पूछा, देखिए अकल खुद भी बताती है कि ये चीजें कुछ सही नहीं है, ये क्या ठीक है या नहीं हमारे लिए। ठीक है, अब चूंकि जहन एक तैयार हो चुके थे ना, अब ये मदनी दौर है, जहन साजी हो चुकी थी, किरदार साजी हो चुकी थी, तो अब ये जब बताया जा रहा है तो फिर वो चीजें अब एक्सेप्ट करना सहाबा के लिए आसान है। तो अब जब पूछा गया शराब और जुए के बारे में तो अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मुनाफिउ लिन्नास। ये शुरू की अहकामात में से है कि आप इनसे कह दें इसमें गुनाह बड़ा है और मुनाफे मुनाफे भी हैं लोगों के लिए, नफा भी है लोगों के लिए, लेकिन इस्मुहुमा अखबरु मिन नफईहिमा, लेकिन इन गुनाह इन दोनों का ज्यादा बड़ा है इनके नफा से। तो क्या बात हुई कि शुरू के चुके अहकाम आते, एकदम से शराब को हराम नहीं किया गया, एकदम से जुए को हराम नहीं किया गया। आज देखे ये चीजें जिन सोसाइटीज में आम है ना, वहां से ये निकालना इस कदर मुश्किल है। 1920 में इन्होंने एक लॉ किया था शराब के बारे में कि शराब नहीं इस तरह से पी पिलाई जा सकती, तो वो चल नहीं सका था, तो आखिर इनको खत्म करना पड़ा। लेकिन इस्लाम ने जब अहकामात दिए और तदरीज से दिए, स्टेप बाय स्टेप दिए, तो उन लोगों ने इन चीजों को छोड़ा। हालांकि कहते हैं नशे को छोड़ना आसान नहीं होता, ये जुए की भी लत होती है, ये जो दोनों चीजें हैं ना इनमें कॉमनैलिटी क्या है, दोनों एडिक्शंस है, दोनों की जिसको कहते हैं ना लत पड़ गई है, इसको जुए की लत पड़ गई, शराब की लत पड़ गई, नशे की लत पड़ गई, वो लत क्या है यानी एडिक्शन, दोनों में ऐसी एडिक्शन होती है कि शराब वाला वो शराब को नहीं छोड़ सकता, नशे वाला नशे को नहीं छोड़ पाता, कितनी दफा तौबा करते हैं फिर वो ही काम शुरू कर देते हैं। इसी तरह जुए वाला उनसे छोड़ा नहीं जाता, हत्ता कि वो सब कुछ अपना लुटा देते हैं, अपना घर बार, अपना जितना पैसा है, बाज तो अल्लाह माफ करे अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को भी उसमें हार देते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं। लेकिन ये ऐसी चीज है कि जिसको ये एडिक्शन लग जाए तो वो फिर इसे बाज नहीं आते। अल्लाह ताला ने इसको यहां पे पहला हुक्म दिया, उसके बाद अल्लाह ताला ने शराब के बारे में सूरह निसा में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा, ए ईमान वालों नमाज के करीब ना जाना जबकि तुम नशे की हालत में हो। यानी अब 5 नमाजें जिसने पढ़नी है वो नशा करके कैसे बैठ सकता है, अगला तो नमाज का टाइम आ रहा है, फिर उसके बाद नशा करेगा, फिर नमाज का टाइम, यानी टाइम को लिमिटेड कर दिया, दिन के बाद तो नहीं कोई पी सकता, ईशा के बाद ही पिएगा, इस तरह से उसको रिस्ट्रिक्ट किया थोड़ा सा। फिर उसके बाद सूरह मायदा में जो तीसरा हुक्म आया, पहले हुक्म पे यहां पे भी कई लोग बाज आ गए, जब यहां पे कहा गया ना कि इसका गुना बड़ा है और इसका नफा भी है लोगों में लेकिन गुना इसका ज्यादा बड़ा है, तो कुछ लोग बाज आ गए। फिर उसके बाद जब दूसरा हुक्म आया कि नमाज के करीब नहीं जा सकते शराब की हालत में, नशे की हालत में, तो फिर बहुत सारे लोगों ने छोड़ दी, लेकिन फिर भी कुछ लोग अभी भी पी रहे थे। तब फाइनल हुक्म आ गया सूरह मायदा आयत 90 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अनसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमल शैतान, ये गंदगी है, ये शैतान के कामों में से है, ये नापाक चीज है, फजतनीबूहू तो तुम इसे बचो, इज्तनाब करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून ताकि तुम फलाह पा जाओ, तुम कामयाबी पा जाओ, यानी ये रुकावटें हैं कामयाबी के रास्ते में, और शैतान तो चाहता है कि तुम्हारे दरमियान बहुत ज़रा अदावत पैदा कर दे, इसके जरिए खमर के और मैसर के यानी शराब और जुए के जरिए तुम्हारे अंदर, क्योंकि जो शराब पीने वाला भी होता है तो क्या होता है उसकी फैमिली लाइफ तबाह होके रह जाती है, बीवियां तंग होती हैं जिनके हस्बैंड शराब पीते हैं, शराब के बाद उनको कोई तमीज नहीं रहती है कि कौन क्या है, मार पिटाई जो अब्यूज होती है बहुत ज्यादा होती है जो जिनके शोहर शराब पीते हैं, फिर इसी तरह जो जुआ है उससे भी बहुत ज्यादा दावत ही होती है, जिसके पैसे कोई एक लेके चला जाएगा तो वो उससे कोई मोहब्बत तो नहीं करेगा, जिसने जो जीत गया हारने वाला क्या करेगा, फिर मेरे मुझे लूट के ले गया है तो वो उससे कोई मोहब्बत तो नहीं करने वाला, दुश्मनी रखेगा ना, और कितनी लड़ाइयां इस चीज के ऊपर हो जाती हैं। फिर उसके बाद और ये चीजें तुम्हें फरमाया, वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अन सलाह, तुम्हें रोकती हैं ये दोनों चीजें अल्लाह के जिक्र से और नमाज से। फिर फाइनल बात अल्लाह ताला ने ये फरमाई, फहल अंतुम मुंतहून, क्या तुम बाज आने वाले हो फिर कि नहीं। तो आप सोचेंगे जब पहला हुक्म आया जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, तो हजरत उमर ने दुआ की कि या अल्लाह और कोई वाज़े हुक्म अता फरमा, तो सूरह निसा में आ गया जो नमाज की हालत में शराब के करीब ना जाना, नशे के करीब ना जाना। अच्छा, और फिर उन्होंने फिर दुआ की कि या अल्लाह ताला और भी इससे वाज़े हुक्म उतार दे हमारे लिए। तो तब ये सूरह माईदा में उतर गया। तब जब अल्लाह ताला ने फरमाया फहल अंतुम मुंतहून, क्या तुम बाज आते हो कि नहीं आते, तो हजरत उमर फरमाते हम बाज आए, हम बाज आए। जामेल बयान में ये बात है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये काम हराम है। बाज लोग बहुत दलीलें देते हैं और कहते हैं लो कहाँ लिखा है कि शराब हराम है, हराम तो का लफ्ज तो कहीं नहीं आया है कुरान में कि ये हराम है, हमें हराम का लफ्ज तो दिखाओ। ओ भाई, जब यहाँ पे कह दिया गया कि ये शैतान का काम है, इससे इज्तनाब करो तुम फला पाओगे, तो क्या बात है, फिर शैतान का काम हलाल होता है? फरमाए इससे इज्तनाब करो, इसे बचो, तो क्या जिसके बचने को कहा गया वो काम हलाल होता है? फिर कहा गया कि ये तुम्हें अल्लाह के जिक्र से और नमाज से रोकता है, जो चीज अल्लाह के जिक्र और नमाज से रोकती है वो हलाल होती है। फिर बताया गया ये अदावत पैदा करता है, बोझ पैदा करता है, जो चीज अदावत और बोझ पैदा करे वो हलाल होती है। और इसका जिक्र यहाँ पे जब बताया गया जो आयत 89 है सूरह माईदा में, फरमाया खमर और जुआ और अनसाब और अजलाम, बुतों के चढ़ावों की जगह और बुतों के पास फाल निकालने के तीर, ये नापाक चीजें, यानी किसके साथ इसको मिलाया गया, बुतों के चढ़ावों के साथ और बुतों के पास फाल निकालने के साथ शराब और जुए को लाया गया। तो आप सोचें कि एक ही लाइन में ये चारों चीजें कही गई, तो क्या ये बाकी चीजें कैसी हैं? वो बताएं, जिस कैटेगरी की वो है वही ये है, शराब और जुआ। बाज लोग कहते हैं हम तो ज्यादा नहीं, हम तो बस $2 का खेलेंगे, $5 का खेलेंगे, बिल्कुल यानी मामूली रकम का। जो चीज हराम है, जिसकी कसीर हराम है, उसकी कलील भी हराम है। कोई लोग कहते हैं नहीं हम इतनी शराब नहीं पीते जिससे नशा ज्यादा हो जाए, हम बस थोड़ी सी पीते हैं। नहीं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसकी कलील हराम है, कसीर हराम है, उसकी कलील भी हराम है, तो फिर क्या सवाल रह गया? जिसकी कसीर से नशा आता है उसके कलील भी हराम है, उसको नहीं पी सकते, उसकी एक घूंट भी हराम है। जबी तो जिस वक्त ये हुरमत आई तो अबू तलहा के घर के अंदर लोग शराब पी रहे थे, और जब किसी आवाज देने वाले ने वहीं से पुकारा तो उनका हाल ये था कि जिसके हाथ के अंदर थी उसने वहीं पे फेंक दी। जो मुंह तक जाम लेकर जा रहा था उसने ये नहीं किया कि अच्छा अभी तो जाके पूछेंगे तो फिर पता करेंगे कि सही भी कह रहा है कि नहीं कह रहा, और कितनी पीनी और कितनी नहीं पीनी, अभी तो पी लूं, ओ लास्ट वन तो मैं अपनी कर लूं, हाय आज तो हराम हो ही जानी है, अगर तो आज की पार्टी तो अपनी मुकम्मल हो जाए, किसी ने ये नहीं कहा, वहीं छोड़ दी। ठीक है, तो इसी के साथ सिर्फ शराब की बात नहीं, इसी के साथ जितनी भी ऐसी चीजें जो नशा करती हैं उसकी कलील भी हराम है, हर नशा आवर चीज की। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त ही फरमा दिया था कि मेरी उम्मत में ऐसे लोग आएंगे जो जिना को, रेशम को, खमर को और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को हलाल कहेंगे, ऐसे भी लोग आएंगे, और फिर अल्लाह ताला उनको बंदर और खिंजीर बना देगा, ये रिवायत है। तो इसका मतलब है कि ये हराम है कि नहीं है, फिर बुखारी की रिवायत है, हराम है तो फरमाया ना कि ऐसे लोग आएंगे जो उनको हलाल कहेंगे। ये सभी हराम है, जिना हराम है, रेशम हराम है मर्दों के लिए, खमर हराम है, और आलाते मौसीकी, आलाते मौसीकी तो कोई समझता ही नहीं, बच्चों को स्कूलों के अंदर वो सब्जेक्ट लेके दिया गया म्यूजिक का, उसमें जाके तबले बजाएं, क्या बजाएं, जो भी जो चीजें होती हैं, पियानो बजाएं, ये बजाएं, बड़े शौक से हम लेके देते हैं, इनको आना चाहिए ये इंस्ट्रूमेंट्स बजाना भी, हराम है, इसीलिए तो फरमाया उसको हलाल करेंगे। एक मेरी उम्मत में ऐसा भी वक्त आएगा, इसको बुरा समझा जाता है कोई, उनका उसका नाम भी खमर के साथ ही है, जिना के साथ है, लिया गया चार चीजों को, वहां पे भी हदीस में, बुखारी उठा के देख ले आप। तो अब आप मुझे बताइए कि, और अच्छा मैसर, माही सर के अंदर भी आज इतने बड़े कैसीनोस खुले हुए, और ऐसा वो उसका यानी चकाचौंध है, इतनी उसको अट्रैक्टिव बनाया जाता है कि वो लोग समझते हैं कि ये तो कोई बुराई की बात ही नहीं है। अब वो पता है उस जमाने में जब वो लोग जुआ खेलते थे ना, तो वो उसके बाद उस पैसे को जो वो जीतते थे उसको गरीबों में बांट देते थे, यानी उनके लिए वो तो क्या बुरी बात है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आज कहते हैं ये कॉन्सर्ट्स कर लें, ये डांस पार्टी कर लें, और उससे जितने भी हम पैसे कमाएंगे ना वो गरीबों के लिए हम दे देंगे, वो चैरिटी में हम दे देंगे, उसको डोनेट कर देंगे। जो हराम से लिया गया पैसा उसको आप कैसे सदका कर सकते हो? वो तो सदका ही कबूल नहीं जो हराम से पैसे से होता है। ये नहीं पता, हलाल का एक भी रुपया दोगे तो वो कबूल है, हराम के मिलियंस भी दे दोगे ना तो वो कोई कबूल नहीं है। जो पैसा कमाया ही गलत जगह से है। हम मैंने इसको खुद यूज थोड़ी करना है। लोग कहते हैं मैंने तो, अगर मैं यहाँ पे जीत गई इस पे तो कोई बात नहीं, मैं तो किसी गरीबों को देने का, उस वक्त हमें गरीबों का ज्यादा ख्याल आ जाता है। कितनी हमें परेशानी उस वक्त लगती है, क्योंकि असल में गरीबों का ख्याल नहीं है, असल में अपना फन करना है, अपने मजे करने। अगर गरीबों का हमें ख्याल हो तो हम अपनी हलाल की कमाई से दें उनके लिए। तो देखें इतनी इसके अंदर फरमाई गई कि इसमें गुना बड़ा है, जिसमें गुना बड़ा हो, जिसका बताया गया कि इसका गुना बहुत बड़ा है, खुद सोचें कि क्या वो चीज हलाल हो सकती है जिसका बताया गया कि गुना है। गुना वाली चीज अल्लाह ने हलाल की भी, लेकिन जब हमने बहाने करने हो तो फिर यही होता है कि हमारे बहाने हैं कि शराब नहीं, कोई वो तो नहीं, हराम तो नहीं है जी, हाँ बुरी होगी, हराम नहीं है। तो आज मुसलमानों में ये शराब नोशी भी आम हो गई है, नशे आम हो गए, जिनकी किताब में लिखा गया है। और फरमाया ठीक है इसका मुनाफा होगा, ये अल्लाह ताला ने यहाँ पे फरमाया फायदा होगा। क्या फायदा होता है लोगों को? क्या वो शराब पी ली तो एक नशा आ गया, एक सुरूर आता है, एक भूल जाते हैं अपनी पता नहीं गम, एक जो कोई बहुत सर्द इलाकों में रहते हैं वो कहते हैं वो उनके अंदर गर्मी आ जाती है, यानी थोड़ा उसको रेजिस्ट करने के लिए सर्दी को, और फिर बाज कहते हैं कि दिमाग और तेज हो जाता है, और जैसे कोई काम नहीं करना रहता। शराब ना खमर का मतलब क्या है? आप सिर्फ अगर मतलब से आप समझेंगे ना आपको समझ आ जाएगी। खमर मतलब होता है ढांप लेना, तो शराब या ये जितने भी नशे हैं ये अकल को ढांप लेते हैं। अब जो चीज इंसान पहले करने से घबराता है, अगर अकल है तो घबराएगा ना कि ये नहीं करना चाहिए मुझे, या शर्माता है कि ये ऐसे नहीं करना चाहिए, जब अकल ही कवर हो गई, जब अकल ही माऊफ हो गई, अकल ही जाती रही, तो वो काम करने में उसको कोई मसला नहीं है। इसीलिए वो कूद जाते हैं कहीं से, क्योंकि नशे की हालत में, इसीलिए उनको कोई शर्म नहीं आती, नंगे हो जाते हैं, इसीलिए वो कोई जंग करने में चले जाने के लिए वो कहते हैं हमारी बहादुरी के लिए ये है, नशा किया और उसके बाद कूद गए जंग में, क्योंकि शराब हमें वो देती है, करेज दे देती है। वो करेज बात नहीं है, वो अकल ढांपी गई, इसलिए इसी वजह से इंसान को अपने महरम रिश्तों की भी तमीज नहीं रहती। तो उसको ये नहीं पता कि ये मेरी बेटी है, और ये मेरी माँ है, और ये मेरी बहन है, उसको नहीं पता होता नशे के अंदर। उनसे बाज दफा वो कोई काम कर जाता है जो कि हराम है। इसी तरह बाज आप शराबियों को देखेंगे, वो कहीं नालियों में गिरे पड़े हैं, कोई कहीं गिरे पड़े हैं, बाज अपने राज उगल देते हैं जब वो शराब के नशे के अंदर होते हैं, क्योंकि अकल ही नहीं है। अल्लाह ताला ऐसी तमाम चीजों से, जो अकल अकल इंसान को इंसान बनाती है ना, वरना तो वो जानवर है, इंसान में और जानवर में वरना क्या फर्क है? अकल उसको इंसान बनाती है, इंसान वो मकाम जो इंसानियत का है, अशरफुल मखलूकात है, वो अकल की वजह से। अकल ही उसकी नहीं रही तो फिर वो क्या है? फिर वो जानवर भी है, वैशी भी है, दरिंदा भी है, सब कुछ ही है। तो इस्लाम ऐसी सब चीजों को मना करता है जो अकल को खराब करने वाली है। और देखें ये अपनी मेहनत करके थक गए, आज तक इनसे ये चीज कंट्रोल में नहीं आ सकी। यानी वो कहते हैं डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, अब वो उनको इतना ही कर सकते हैं ना जाहिर कि भाई आप ड्राइव ना करो, क्योंकि उनको पता है जो एक्सीडेंट इसके अंदर होते हैं और उसके बाद कितनी कीमती जानों का जिया हो जाता है। एक दफा मैंने एक कोर्स किया था ड्राइविंग का, उसमें इतने क्वेश्चंस इसके ऊपर थे, ये शराब के ऊपर, और कायदा एक वीडियो थी जिसमें एक बाप दिखाया था उसका बेटा जवान, और किसी ने शराब के नशे में वो निकला रात को और उसने उसके बेटे को हिट किया और वो उसका बेटा चला गया, तो वो उसकी दर्द उसका आप सोच नहीं सकते थे कि वो बाप कैसे, उसकी उम्मीदें थी उस बच्चे के साथ और जवान बच्चा कैसे खत्म हो गया। इस तरह आप बहुत से हादसा सुनते हैं, ड्रंक ड्राइवर ने मार दिया और खत्म हो गया। तो यहां पे लेकिन उसका ये नहीं फरमाया अल्लाह ताला ने कि उसके अंदर नफा है लोगों के लिए लेकिन उसमें नुकसान भी है। नुकसान नहीं फरमाया, फरमाया उसमें गुनाह है, क्योंकि जो ईमान वाला है ना उसके लिए इतना काफी है कि किसी चीज में गुनाह हो, बड़ा गुनाह है। यानी अल्लाह की नजरों से इंसान को ये काम गिरा देते हैं, ये कामयाबी के रास्ते से हटा देते हैं। फरमाया ना इसलिए इनसे बचो क्योंकि लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। इसका मतलब ये काम कामयाब नहीं होने देंगे इंसान को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने किसी नशावर चीज को पिया उसकी 40 दिन की नमाजें नाकिस हो गई, 40 दिन की उसकी नमाज नहीं कबूल हो गई। और कयामत के दिन ऐसे लोगों को दोजखियों की पीप पिलाई जाएगी, जो उनके जख्मों से उनकी पीप निकल रही होगी ना, वो शराबी, जो शराब यानी जो तौबा किए बगैर मर गया, शराब या नशा जो भी करते हुए मर गया। और उनकी हालतें देखें, जो नशे में भी होते हैं वो क्या क्या नहीं, हर चीज घर की बेच देते नशा करने के लिए। और वो किस तरह के उनके हाल ना, वो किसी काबिल रहते हैं, होमलेस हो जाते हैं, कैसे वो गटर्स में गिरे पड़े होते हैं और उनको अपना होश नहीं होता, उनके हाल हुलिया आप देख के पहचान लेते हैं कि ये नशे वाले लोग। ये चीजें इनमें बुराई है। और देखिए हमारे लिए अल्लाह ताला ने जितने भी अहकाम दिए ना उनमें हमारा फायदा है, हमारा फायदा है। लेकिन आज इसको भी बड़ी बहुत अमीर कबीर होने की और हाई सोसाइटी की एक चीज समझी जाती है कोई शराब पी रहा है। ये हमारे मयार हो गए, जबकि कुरान कह रहा है कि इसमें ठीक है मुनाफे होगा, लेकिन तुम ये नहीं देखते गुना इन दोनों का बड़ा है इनके नफे। कोई कह दे नहीं अल्लाह ने कहा तो है ना, नफा भी तो है, तुम्हें तो ये चीज ही रोक देनी चाहिए। जब पहले फरमाया इस्मुल कबीर, बड़ा है इसका गुना, बड़े गुनाहों में से ये आता है, और ये दोनों ही चीजें। वह यस अलूना का मादा यूं फेकून, और वो फिर पूछते हैं कि वो क्या खर्च करें। यानी आप देखें जब इंसान खमर और मईसर छोड़ देगा तो पैसे की भी बचत होगी, तो कहाँ खर्च करें, क्या खर्च करें। कुल अल अफ, कह दीजिए जो जरूरत से जायद है, जो सरप्लस है। यानी ये मतलब नहीं कि जितना भी जरूरत से जायद होगा वो सारा उधर दे दिया जाएगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि जो जरूरत से जायद आपके पास है उसके अंदर से आप खर्च कर सकते हैं। यानी अब आप जब यहाँ ये इन चीजों को छोड़ते हैं। अच्छा एक बात मुझे भूल गई, जो मैं एक हदीस आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाह रही थी, और वो ये कि शराब के साथ सिर्फ पीने वाले की बात नहीं है, शराब के साथ और बहुत सारी हुरमतें हैं, यानी बहुत सारी चीजें और हैं जो उसके साथ रिलेटेड हैं जो हराम की गई हैं। तो जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने खमर पर लानत फरमाई है और खमर पीने वाले पे भी लानत है। अब वो जिसके ऊपर लानत हो गई वो अल्लाह की रहमत का क्या क्या पा सकेगा उसमें से हिस्सा। लानत का मतलब ही है अल्लाह की रहमत से महरूमी। खास शराब पिलाने वाले पे भी, यानी कोई इस किसी जगह काम कर रहा है वो शराब पिला रहा है उसके ऊपर भी लानत कर दी गई है। घर में कोई गेस्ट आए हैं या शादियों पे लोग आजकल कहते हैं जी हमारे नॉन मुस्लिम गेस्ट आ रहे हैं इसलिए हमने उनके लिए शराब रखी है, तो आप उनको पिला रहे हैं फिर शराब, तो फिर आप भी उसके अंदर ही आ गए जिनके ऊपर लानत की गई है। शराब को बेचने वाला, वो कहते हैं आजकल कारोबार नहीं चल सकता, शराब ना रखी हो तो कारोबार नहीं चलेगा ही, तो आपको पता है वो कारोबार में ही लानत पड़ गई तो फिर बताए, और उस बंदे पे लानत पड़ी जो शराब बेच रहा है, तो क्या बरकत होगी वहां। फिर खरीदने वाले पे भी, कोई कहता है मैंने खरीद के किसी को गिफ्ट देना है, क्रिसमस पे गिफ्ट देना, न्यू ईयर पे गिफ्ट देना, क्योंकि हमारे तो नॉन मुस्लिम नहीं है वो लोग, तो मैं खुद थोड़ी पी रहा हूँ इनको दे रहा हूँ ना, उसके ऊपर भी लानत है। शराब को निचोड़ने वाले पे भी, और इसके ऊपर इसको बनाने वाले पे भी, और इसको लादने वाले पे भी जो लोड भी कर रहा है, और जिस पे ला जिसके पास लाद के लाई जाए, यानी किसी स्टोरेज में रखी जा रही है, कोई जगह अपनी दे रहा है कि यहाँ पे शराब रख लो आप स्टोर कर लो, ये उन सब के ऊपर लाना था। ये अबू दाऊद की रिवायत है, ये इतनी बुरी ये चीज है। और शराब पीने वाले जब वो शराब पी रहा होता है ना, उस वक्त उसका ईमान नहीं होता, ये बुखारी में है, उसका ईमान नहीं होता, जैसे जिना करने वाले का जिना के वक्त ईमान निकल जाता है, इसी तरह उसका भी ईमान निकल जाता है। ये छोटी बातें नहीं है, ये बहुत बड़ी बातें हैं, और जुआ भी बहुत बड़ी बात है। तो इन जगहों पे खर्च करने की बजाय कहाँ खर्च करो, जो क्या खर्च करो, जो जो जरूरत से बढ़ गया है आप उसको अल्लाह के रास्ते में लगाओ। कदालिक युबय्यिनु अल्लाहु लकुम अल आयाति लअल्लकुम ततफक्करून फिद दुनिया वल आखिरा। ये यहां तक खत्म होती है बात ना, फिल आखिरा वल आखिरा तक। इस तरह अल्लाह बयान करता है तुम्हारे लिए आयतें, यानी खोल के अल्लाह ताला ने सारी बातें बयान की है ताकि तुम गौर व फिक्र करो दुनिया में भी और आखिरत में, यानी दुनिया के बारे में भी और आखिरत में, कि कौन सा सौदा है जो मुझे करना चाहिए। यहाँ पे ये खर्च करूंगा तो यहाँ पे मुझे इसका क्या नफा मिलेगा, और आखिरत के लिए मैं खर्च करूंगा तो उसके लिए क्या नफा मिलेगा। और आखिरत दुनिया से ज्यादा बेहतर और बाकी रहने वाली है। जो इन्वेस्टमेंट यहाँ होगी उसके अंदर लॉस हो सकता है, उसके अंदर फिक्स्ड भी कहीं कराते हैं कोई, यानी कोई आपको कहता भी है कि मैं इतने आपको महाना दिया करूंगा, तब भी वो कितना दे देगा, 5% दे देगा, 10% दे देगा। अल्लाह के यहाँ जो इन्वेस्ट करेगा 700%, और वो तो कहीं पे भी जाया नहीं हो सकता, उसमें कोई नुकसान नहीं हो सकता, वहां पे बैंकरप्सी नहीं हो सकती। यहाँ तो बैंक भी लुट जाते हैं, उसमें सरमाया रखा हो तो कोई कहते हैं खत्म हो गया बैंक, अब क्या है, सब गया किसी बंदे का। लेकिन अल्लाह ताला के हाँ वो बैंक है जिसमें जमा कराने वाला कभी मायूस नहीं होगा। तो तुम गौर व फिक्र करो, और वैसे भी सिर्फ खर्च करने के मामले नहीं, वैसे भी गौर व फिक्र करो दुनिया और आखिरत में, कि कहाँ अपनी एनर्जीज लगानी है, कहाँ अपना वक्त इस्तेमाल करना है, कहाँ के लिए मेहनत ज्यादा करनी है। दुनिया आखिरत के मुकाबले में कैसी है, कितनी हकीर है, गौर व फिक्र करो उस पे। आज सारा जो गौर व फिक्र हो रहा है ना वो सिर्फ पहले पार्ट पे हो रहा है, फिर दुनिया हो रहा है। दुनिया के मामले में बहुत माहिर है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, सियासत में कौन ऊपर जा रहा है, कौन से कपड़े आजकल इन है, कौन सी चीजें आजकल खरीदनी चाहिए, कौन सी नहीं खरीदनी चाहिए, कहाँ सैर के लिए जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, सब चीजें इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। लेकिन आखिरत के बारे में कोई इल्म नहीं है। आखिरत में क्या है, आखिरत में किस चीज का फायदा मिलेगा, आखिरत की क्या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, आखिरत की फिक्र, आखिरत का ध्यान, उसमें गौरव फिक्र नहीं है। अल्लाहु अकबर। तो फरमाया इन दोनों में गौरव फिक्र करो। जब कंपैरिजन करेंगे ना दोनों में, तभी पता चलेगा कि किधर का सौदा करना है। वयसअलूना का अनिल यतामा, वो आपसे यतीमों के बारे में पूछते हैं। जब यतीम बच्चे ना वो लोग अपने घरों में रखते थे, यानी अपने रिश्तेदार, किसी का भतीजा भांजा भतीजी यतीम हो गए, तो चचा या ये ताया या दादा या जो भी उनके रिश्तेदार होते थे, और वो अपने घरों में रखते थे, वहां पे यतीम खाने नहीं होते थे। कम अज कम उस सोसाइटी में ये चीज थी। आज तो यतीम खाने बना के अपना सर से ही उतारा, कौन किसको रखता है। लेकिन वो उस जमाने में घर में एक यतीम बच्चा पलता था, अपने खानदान में पलता था, अपने कबीले में पलता था। तो वो जाहिर है जब उनके बाप कुछ छोड़ के गए होंगे तो वो इन यतीमों का होता था। तो जो भी सरमाया, जो जायदादें, जो पैसा वो छोड़ के गए हैं, उसका अब क्या करना। अब जाहिर है जिसके पास वो रह रहा है, अगर वो अपने पैसे के साथ वो मिला लेता है, तो उनको जब ये इंस्ट्रक्शंस आ गई, अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया कि यतीम के माल के करीब ना जाना, और ये फरमा दिया कि यतीम का माल खाने वाला जो है, पहले तो सूरह अनाम में आया ना, वला तकरबु माल यतीम इल्ला बिल्लती ही आसन, यतीम के माल के करीब ना जाओ ताकि वो अच्छे तरीके के सिवा, ताकि वो अपनी जवानी को पहुंच जाए। और ये भी आ गया सूरह निसा में, इन्ना लदीना याकुलून अमवाल यतामा जुल्मन इन्नमा याकुलून फी बुतूनिहिम नारा। जो यतीम का माल खाते हैं जुल्म के साथ, वो तो अपने पेटों में आग भर रहे हैं। तो सब लोग इतने परेशान हो गए, जाहिर है सहाबा कराम तो हर चीज को बहुत सीरियसली लेते थे। हमारी तरह नहीं आयते पढ़ पढ़ के तो आगे जा, नहीं, वो हर चीज को देखते थे कि वो हमारे घर में तो यतीम पल रहा है, और अगर हम इसके माल के अंदर से कहीं ये ना हो कि हम खुद कुछ खा लें, तो ये तो अपने पेटों में हम आग भर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, यतीम की ग्रोसरी अलग, यतीम का खाना अलग बन रहा है, यतीम की हर चीज अलग कर दी। बाज़ औक़ात ये होता था यतीम का खाना जो बच जाता था, वो सड़ के खराब हो जाता था, लेकिन वो नहीं उसको टच करते थे। अब देखिए कितनी मुशक्कत है, घर में दो दो सालन पकने, ग्रोसरियां लगानी, हर चीज का एक एक पैसे का अलग अलग हिसाब किताब रखना, ये कितना मुश्किल है एक फैमिली के लिए, तो बहुत बड़ी परेशानी हो गई। तो यहाँ पे कहा गया कि वो आपसे यतीमों के बारे में सवाल करते हैं कि हम क्या करें, तो आप उनको बताएं क्या इस्लाहुम लहुम खैर, अगर तुम खैर ख्वाही की नीयत रखते हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी आपके दिल में खैर ख्वाही है, कोई उनका बुरा नहीं चाहते, कोई ऐसे नहीं, मसलहत के साथ हिकमत के साथ, इन तो खाली तुम इखवानों को, अगर तुम उनका माल अपने साथ जमा मिला लोगे तो तुम्हारे वो भाई हैं, कोई मसला नहीं, यानी तुम्हारे दीनी भाई हैं। यानी क्या मतलब हुआ कि ये अब आपको जरूरत नहीं, अलग अलग उनका खाना पीना सब कुछ करो, लेकिन यानी मारूफ तरीके से, कोई एक मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल दे देती हूँ कि एक बंदे को पता है कि ये बच्चा कितने का खाना खा लेता होगा, मसलन है कि $100 का खाता होगा महीने का या 200 का, तो चलो उतने लेके अपने माल में मिला लिया, अपनी ग्रोसरी में और अपनी सब चीजों में शामिल कर लिया, और उतने से वो भी खा रहा है, बजाय उसके अलग खाने बन रहे हैं, अलग सब चीज हो रही है, वो तो एक मुश्किल हो गई, उसके लिए प्लेटें अलग आ रही है, उसके लिए चम्मच अलग आ रहा है, उसके खाना उसका एक अलग बनाने की मुशक्कत, तो ये तो बहुत प्रॉब्लम हो गया ना। लेकिन अगर भलाई के साथ, इस्लाह के साथ, यानी तुम्हारे अंदर खैरखाई, सिंसेरिटी है तुम्हारे अंदर, तुम फिर उनका माल मिला भी लेते तो कोई मसला नहीं, ठीक है, उनकी वेलफेयर का ख्याल है। वल्लाहु यालमुल मुफसिदा मिनल मुस्लिह, अल्लाह को तो पता है ना जो कौन तुम में से मुफसिद है, फसाद करने वाला, और कौन इस्लाह करने वाला है, यानी तुम्हें चाहे लोग कितना भी वाह वाह करते रहे कि हाय इतने इसने इतनी अच्छी तरह यतीम को रखा हुआ है, इतना उनका ख्याल करता है, ऐसे है, लेकिन अल्लाह को पता है कि दिल में क्या है, क्योंकि नियतों का हाल अल्लाह सिर्फ जानता है और कोई नहीं जानता। अल्लाह को पता है फसाद करने वाला कौन है, यानी फसाद करने वाला कौन मतलब, यानी जो यतीम का माल खाना चाहता है, हड़प करना चाहता है जल्दी जल्दी उसको, और वो तो 200 का खाता होगा, उसको जितनी अपने पूरे घर वालों की ग्रोसरी आती है उतने उसके पैसों में से निकाल लिया, $500 की अपनी ग्रोसरी है तो 500 ही उसमें से ले ली, वो इतना तो नहीं खाएगा, लेकिन बस सिर्फ ये है कि चलो जल्दी जल्दी खा लें, ये बड़ा हो जाएगा तो तीन दिन पैसे ले लेने हमसे, उसकी जायदादों को कब्ज कर लिया, अपने उसमें लगा लिया, यानी उसका पैसा कहीं इन्वेस्ट कर दिया, और उसके अंदर फसाद की नीयत है, हम अपना क्यों लगाएं इसका लगाते, जबकि पता है यहाँ पे रिस्क है, तो अल्लाह को पता है कि फसाद करने वाला कौन है और इस्लाह करने वाला कौन है। ये बड़ी, ये सिर्फ यतीम के बारे में नहीं, ये एक जिसको मैं आपको बताती हूँ ना कि यूनिवर्सल कोई एक बात आती है आयत में कि अल्लाह को पता है कौन खराबी की नीयत रखता है, कौन बदनीयत है, और कौन है जो इसलाह करने वाला है किसी भी मामले, इसलिए अल्लाह ताला के ऊपर अपनी नजर रखें कि अल्लाह को तो मेरी नीयत की सब खोट मालूम है, मैं उससे डरूं, और वो मेरी नीयत देख के फैसला करेगा, चाहे मेरे कितने ही लोग मेरी तारीफें कर रहे हैं, मुझे कितना ही अच्छा समझ है, अल्लाह को तो पता है कि क्या खोट है, और मैं अपने आप को कितनी जस्टिफिकेशंस दे लूं, कितनी तसल्लियां दे लूं, लेकिन अल्लाह जानता है मुसले कौन और मुफसिद कौन है। वलौ शाअ अल्लाह लअअनतकुम, अगर अल्लाह चाहता तो तुम मुश्किल में डाल देता, मुश्किल ये थी कि तुम मिला के ही कभी नहीं कर सकते खाने को, अलग अलग हमेशा तुम्हें रखना पड़ेगा, तो मुश्किल में पड़ जाते ना लोग, तो अल्लाह ताला चाहता तो तुम्हें मुश्किल में डाल देता, लेकिन इन अल्लाह अजीज और हकीम, अल्लाह ताला गालिब भी है, हिकमत वाला भी, उसने तुम्हें इस मुश्किल से निकाल दिया, वो जबरदस्त है, वो पूरी अथॉरिटी रखता है, और उसके हर फैसले में हिकमत है। अक्सर ये होता है कि जिसके पास पूरी पावर हो ना, पूरी पावर, वो जो मर्जी चाहता है करता है, चाहे जुल्म करे, चाहे अदल करे, चाहे किसी के साथ ज्यादती करे, क्योंकि उसके पास पावर होती है, आप देखिए थोड़ी सी पावर किसी के पास आ जाए तो वो अपनी मनमानियां चलाना शुरू कर देता है, उसको नहीं कोई इंसाफ का रहता, वो बस उस पावर का भी, वो कहते हैं ना एक नशा होता है, लेकिन अल्लाह ताला के पास अल्टीमेट पावर है कि उसको कोई पूछने वाला नहीं है, तब भी उसका हर फैसला हिकमत पे मबनी, सुभान अल्लाह, ये कितनी बड़ी बात है।